सो आज बलराम अपियरेंस डे है। हम लोग भागवतम से एक श्लोक लेकर के और बलराम जी के विषय में चर्चा करेंगे। ये भागवतम के दशम स्कंद अध्याय दो का श्लोक पांच है, लेकिन चार पांच साथ में है, इसलिए दोनों बोर्ड पर लिखा हुआ है। एके तम अनुरुंधाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षडसु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमः वैष्णवं धाम यम अनंतं प्रचक्षते गर्भ बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। एके तम नुरुंधाना एकेतम अनुरुंधाना ज्ञातय प्रपाशते हतेषु षडसु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यम अनंत प्रचक्षते गर्भो बहुह देवक्या हर्ष शोक विवर्धना।
जोर पड़ रहा है साफी
श्लोक पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, शांति कराओ थोड़ा। माता जी लोग
ये
एके कुछ लोग तम उस कंस को अनुरूढ़या अपनी नीति का पालन करने वाले ज्ञातया जानकर सॉरी संबंधी जन पर्युपासते उसकी हां में हां मिलाने लगे हतेसु मारे जाकर षडसु छ बालेसु बालक देवक्या देवकी द्वारा उत्पन्न अग्रसेनिना उग्रसेन के पुत्र कंस द्वारा सप्तम सातवां वैष्णवम भगवान विष्णु के धाम अंश जम जिसको अनंतम अनंत नाम से प्रचक्षते विख्यात है गर्भ गर्भ बभूव था देवक्या देवकी का हर्ष शोक विवर्धना एक साथ हर्ष तथा शोक को बढ़ाने वाला अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारे पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के छह पुत्रों का वध कर चुका था तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। तात्पर्य कुछ प्रमुख भक्तगण यथा अक्रूर कंस के साथ उसकी तुष्टि के लिए रहते रहे। ऐसा उन्होंने कई उद्देश्यों से किया। उन सबों को आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात आठवें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे, अतः वे उत्सुकतापूर्वक उनके प्राकट्य की प्रतीक्षा करने लगे। कंस के साथ रहने से वे भगवान को जन्म लेते तथा बाल लीलाएं करते देख सकेंगे और बाद में अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए जाएंगे। पर्युपास्ते शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कुछ भक्त कंस के पास इसलिए रुकना चाहते थे कि वे भगवान की इन सब लीलाओं को देख सके। कंस ने जिन छह बालकों का वध किया था वे पूर्व जन्म में मरीचि के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के साप बस ब्रह्मा के साप बस उन्हें हिरण्यकश्यपु के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा। ब्राह्मण है ब्रह्मा। कंस ने काल नेमी के रूप में जन्म लिया था और अब वह अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यही वह रहस्यपूर्ण बात थी। जब ही देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान लौट जाते। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने भांजों को नहीं मारता, किंतु कंस इतना क्रूर था कि बिना किसी झिझक के ऐसा करता था। अनंत या संकर्षण द्वितीय चतुर्व्यूह में से संबंधित है। यह अनुभवी टीकाकारों का मत है। वो पंखा पीछे का थोड़ा बंद कर देने का सब पंखा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्जिन मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दाऊ जी की जय। दाऊ जी की भैया कृष्ण कन्हैया नहीं, प्रभुपाद ने कहे। तो आज बलराम जी का आविर्भाव तिथि है। आज हम लोग बलराम जी के विषय में कुछ कहें और सुनेंगे। मुख्यतः मैं 6 विषयों पर कहूंगा, 6 विषयों पर हम विचार करेंगे। 1 बलराम जी का तत्व, 2 बलराम जी का जन्म, बलराम जी का नामकरण, कुछ बाल लीलाएं, कुछ लीलाएं और सुधाम गमन, इन विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे। ये लीलाएं जो बातें हैं मुख्य करके भागवत महापुराण प्रमाण है। भागवत में, महाभारत में, हरिवंश पुराण, गर्ग संहिता, गोपाल चंपू और आनंद वृंदावन चंपू से प्राप्त किया गया इन्फॉर्मेशन है। बलराम जी के अनेक नाम हैं, बलराम, बलदेव, बलभद्र, हलधर, हलयुधा, रोहिणी नंदन इत्यादि। अब कोर्स दाऊ जी कहते हैं, बड़े भैया को दाऊ जी कहते हैं, वो भी है। तो बलराम जी के अनेक नाम है। कोई सिटी मार रहा है कि मोबाइल की घंटी बज रही है? यह जो श्लोक बोर्ड पर लिखा हुआ है बलराम जी के आगमन के संबंध में बताया गया है। इसके पहले का कथा जानना बहुत जरूरी है। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज 6 प्रश्न किए थे। उसमें से एक प्रश्न था, रोहिणयातन यह प्रोक्तो राम संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना। कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि बलराम जी नित्य रोहिणी के पुत्र हैं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि वे देवकी के गर्भ में आए और बिना देह बदले 2 माता का बेटा हो गए? देह बदलना पड़ता है ना दूसरे मां के गर्भ में जाने के लिए, तो बिना देह बदले 2 माता का पुत्र कैसे हो गए? ये प्रश्न था 6 प्रश्नों में से। अब देवकी का विवाह हो चुका है, जब आकाशवाणी हुआ तो कंस देवकी को मारने के लिए तुल पकड़ा, मारने के लिए वसुदेव जी विभिन्न प्रकार से देवकी का रक्षा करने का प्रयास किए और अंत में उन्होंने सोचा कि जब तक से बल और बुद्धि है हमें रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके उपरांत भी यदि कोई रक्षा नहीं कर सकता है तो उसमें देही का कोई गलती नहीं है, वो बेचारा प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। ऐसा सोचते हुए विचारते हुए सम दम भेद भय दंड सब कुछ बताने के बाद वसुदेव जी ने कहा कंस से कि भाई देखो तुम्हें थोड़ा ध्यान से सुनो, आकाशवाणी ने क्या कहा था, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का आठवां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो यह सही है कि देवकी तुम्हारी काल नहीं है, देवकी का बच्चा तुम्हारा काल है, वो भी आठवां बच्चा, तो देवकी क्यों मार रहे हो जब देवकी तुम्हारी काल नहीं है? पंचरत्न कहां है, सो रहा है क्या पंचरत्न? रात को भी काम किया क्या? आगे आगे आओ। चतुर्भुज प्रभु और पंचरत्न प्रभु ने कल कहा कि आप हिंदी में क्लास दीजिएगा, मैं हिंदी में दे रहा तो सो रहा है, अंग्रेजी में दे रहा तब सोएंगे। आगे आओ। पंचरत्न हमारा पहला असिस्टेंट था। हाँ जी, तो क्या बोल रहे थे? वो आगे बढ़ गया गाड़ी। नहीं कहा कि देवकी आपकी काल नहीं है, देवकी का बच्चा है, वो भी आठवां बच्चा है, तो क्यों मारने का, छोड़ दो। फिर वसुदेव सोचे कितना कहने पर नहीं मानेगा कंस, तो उन्होंने कहा कि देखो देवकी तुम्हारी काल नहीं है बल्कि इसका आठवां गर्भ तुम्हारा काल है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक क्या आठवां क्या देवकी के जितने संतान होंगे लाकर के मैं तुम्हें दे दूंगा, लाकर के मैं तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव जी के प्रति कंस बड़ा स्नेही था, वसुदेव जी से कंस की बड़ी मित्रता थी, और वसुदेव जी बल में बुद्धि में कंस से कहीं आगे थे, इसीलिए देखा जाता है बलवान व्यक्ति का शरण बहुत लोग लेते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का लोग शरण लेते हैं, साइंसिस का शरण पूरा संसार ले लिया है, इसीलिए हमेशा कंस वसुदेव जी के शरण में रहता था, उनका बात मानता था, जो भी वसुदेव जी कहते थे वो मानता था, और वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। कंस को मालूम था सब कुछ हो जाए लेकिन वसुदेव जी झूठ नहीं बोलेंगे। जब वसुदेव जी ने यह वचन कहा कि एक नहीं समस्त पुत्रों को ला करके मैं दे दूंगा, नहीं अस्यास्ते भयम सौम्य यदवागा आह श्री निर्णय पुत्रान समर्पय से स्यात यहते भयम उपस्थितम, समस्त पुत्रों को लाकर दे दूंगा। तब कंस को विश्वास हो गया वसुदेव जी में कि ठीक कह रहे हैं, और छोड़ दिया देव के वसुदेव को। इस प्रकार से कालांतर में वसुदेव जी को क्रमशः आठ पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। जो प्रथम पुत्र था उसका नाम था कृतिमंत, वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार जो क्षत्रिय होते हैं उनके बच्चों का नाम 3 साल से 5 साल के बीच में रखा जाता है। तो यह प्रमाणित होता है कि जो पहला बच्चा था कृतिमंत उसका नामकरण हो गया था तो 3 से 5 साल के बीच का बच्चा था, न कि हम कहीं कृष्णला श्याम देख लिए हैं कि बच्चा जन्म लिया और वसुदेव जी का चले गए, ऐसा बात नहीं है। आचार्य गर्भवर्णन करते हैं कि वो 3 से 5 साल का बालक था, इसीलिए आगे स्वयं जब कंस को लेकर के जा रहे थे इस बच्चा को, इस बात का प्रतिपादन आगे भी हुआ है कि वसुदेव जी बड़े कृमकर्तव्य विमूढ़ हो चुके थे, उस समय वे धर्म संकट में पड़ गए थे। एक तरफ अपने संतान का रक्षा करना, समस्त बाप मां का धर्म है अपने बच्चे का रक्षा करें, और दूसरा बात था कि उन्होंने वचन दे दिया था कंस को कि मैं तुम्हें समस्त पुत्रों को ला करके दूंगा। तो अपने सत्य धर्म का, सत्य वचन का पालन करना, दोनों धर्म था, एक धर्म था अपने संतान का रक्षा करना और दूसरा धर्म था अपने दिए गए सत्य वचन का रक्षा करना, दोनों में एक टूटने वाला था। यदि संतान का रक्षा करने के लिए कहीं छिपा देते तो सत्य वचन टूट जाता, यदि सत्य वचन का पालन करने के लिए अपने बच्चे को कंस के पास ले जा रहे हैं तो बाप का जो धर्म है वह छूट रहा है। वसुदेव जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके थे, ये लोग कथा में भी नहीं आते, हल्ला कर रहे हैं उधर ट्रांसफर रूम में, किम कर्तव्य विमूढ़ से क्या करूं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे, अपने बुद्धि का प्रयोग किए। हम सब लोगों को अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जब हम किस प्रकार के धर्म संकट में पड़ जाएं कि अथॉरिटी का बात माने कि नहीं माने, निंदा राय सुने जाऊं क्या करूं, तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। वसुदेव जी बुद्धि का प्रयोग किए, उन्होंने कहा कि दोनों का संबंध है, बेटा का भी संबंध है और मेरे वचन का भी संबंध है। जो बेटा है उसका संबंध मेरे देह से है, और जो सत्य वचन है इसका संबंध भगवान से है। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्याप जोनि निहितम च सत्य भगवान सत्य पुरुष सत्यम परम धीमहि। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ, ये बेटा है टेम्पररी है, ये जो संबंध है बाप और बेटे का ये टेम्पररी संबंध है, लेकिन सत्य का और भगवान का जो संबंध है वो इटर्नल है। वसुदेव जी सोचे कि यदि मैं सत्य वचन तोड़ता हूं, सत्यात्म जोनि निहितम च सत्य, भगवान सत्य में निवास करते हैं, यदि सत्य वचन तोड़ता हूं तो भगवान नहीं आएंगे। जहां सत्य है वहां भगवान है, जहां सत्य नहीं है वहां भगवान नहीं है। इसलिए वसुदेव जी सत्य वचन का पालन करते हुए अपने बेटे को लेकर के गए, बाप लेकर के जा रहा है अपने बेटे को। जब कंस वसुदेव जी के सत्य निष्ठा को देखा, सत्य एक ऐसी वस्तु है जो सबको प्रसन्न कर सकती है, सब लोग खुश हो जाते हैं सत्य के साथ में, सत्यवादी व्यक्ति के साथ में, कंस बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर कहता है कि हे वसुदेव जी, इस बालक से हमें कोई डर नहीं है। कहते हैं प्रतियातु कुमारो यम, अगेन कुमार शब्द आया हुआ है, तो जानते हैं आप लोग कुमार यानी 5 साल का जो बच्चा है उसे कुमार कहते हैं, है? कौमार आचरित प्राग्नो, 5 साल का बच्चा, तो ये सब प्रमाणित करता है कि जो बच्चा है 3 से 5 साल के बीच का वह बच्चा है, बालक नहीं है, बाल नहीं है, वो कुमारावस्था को प्राप्त कर लिया है। तो कंस कहता है इस कुमार से हमें कोई तकलीफ नहीं है, यह हमारा काल नहीं है। अरे काल तो 9वां गर्भ है, इसलिए आप इसको लेकर के जाइए, इसे कोई तकलीफ नहीं है। वसुदेव जी कंस को थैंक यू भी नहीं बोले, क्योंकि वे जानते थे कि कंस जो है असती बुद्धि का सेवक है, कब अपना मन बदल देगा पता नहीं, इसलिए थैंक यू नहीं बोले। जब इधर वसुदेव जी निकल पड़े बालक को लेकर के, तो नारद जी टपक पड़े, नारद जी के काम है, क्या काम है? झगड़ा लगाना नहीं भाई, नारद नार को देने के लिए, नारायण को देने, भगवान जल्दी आ जाए। नारद जी ने सोचा कि कंस में दया आ गई अपने भांजा के प्रति, तो 8 साल में बदल जाएगा, फिर भगवान आएंगे नहीं, पापी नहीं कर, भगवान कहां से आएंगे, गड़बड़ हो गया। तब कंस के पास नारद जी आए और कहे कि महाराज आपने बड़ा गलती किया, हे कंस बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, अरुध। नारद जी आकर के कंस को याद दिलाए कि यह जो बालक है, तुम देवताओं के गणना को नहीं जानते हो, देवताओं का गणना पहला आठवां हो सकता है और आठवां पहला हो सकता है, 2 + 2 = 2 and 2 - 2 = 2, ये देवताओं का गणना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पुण्यात् पुण्यमुदच्यते पुनश्च पुण्यमादाय पुण्यमेव अवशिष्यते। तो तुम इस भ्रम में मत रहो कि पहला कौन है और आठवां कौन है, मारते जाओ मारते जाओ। देखिए लग रहा है कि नारद जी ऐसा क्रूर काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन नारद जी इसके साथ में कई एक वचनों का पालन कर रहे हैं। एक, ये जो 6 के 6 गर्भ थे, षड गर्भ, इन लोगों पर श्राप था। ये जो षड गर्भ हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मरीचि के ये पुत्र हैं, मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उस नाते से नाती पोता हुए, नाती हुए। अब ये लोग खोद खोद कर दवाई से पूछ रहे थे कि आप इतना बड़े कैसे हो गए, बताइए। तो उन्होंने कहा कि तपस्या कर करके, तो इन्होंने निर्णय किया कि हम भी अब तपस्या करेंगे, और वे बिना ब्रह्मा जी से पूछे तपस्या करने चले गए। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया कि तुम लोग आज्ञा पालन नहीं करते हो, आसुरिक प्रवृत्ति धारण किए हो, असुर लोग आज्ञा पालन नहीं करते हैं, असुर लोग वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। यह सशास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। यह सशास्त्र विद्धिम वर्तते कामकारत, कामकारत इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, शास्त्र का उल्लंघन कर देंगे, अथॉरिटी का उल्लंघन करेंगे, बात नहीं मानेंगे। जो अपने श्रेष्ठ का बात नहीं मानता है वह असुर है, असुर का यही गुण है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया है कि तुम लोग में आसुरी भाव आ गई है, तुम लोग जाओ असुर बन जाओ। कालांतर में यही मरीचि के 6 पुत्र, हिरण्यकश्यपु के पुत्र, कालनेमी के पुत्र हुए, और वहां भी दादाजी से और पोता से बड़ा संबंध, इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल, मूल से उसका इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां भी ब्रह्मा जी से, हिरण्यकश्यपु से पूछे आप इतने कैसे बड़े हो गए, सब देवता आपसे कांपते हैं डरते हैं, हिरण्यकश्यपु बताया कैसे बड़ा हुआ, वहां भी तपस्या बात आया। तो फिर ये लोग तपस्या करने चले गए, तो हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आया, अब तो असुर हो ही गए थे, अब असुर क्या श्राप देगा। तो उसने श्राप दिया कि जाओ तुम लोगों का काल तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा बाप तुमको मारेगा। अब नारद जी क्या कर रहे हैं, नारद जी ब्रह्मा जी के वचन को पूरा कर रहे हैं, हिरण्यकश्यपु के वचन को पूरा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम्हारा बाप मारेगा, तो काल नेमी हुआ कंस। यदि कंस नहीं मारता पहले बच्चे को तो इन लोगों का मुक्ति तो अभी नहीं हुआ है, ब्रह्मा जी से लोग प्रार्थना भी किए थे बाद में कि कैसे हमारी मुक्ति होगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान आएंगे और उसका उच्छिष्ट तुम लोग पान करोगे तब तुम लोगों की मुक्ति होगी। भगवान का उच्छिष्ट पान, गोपाल चंपु में इसका वर्णन है। तो जब भगवान कंस को मारकर देवकी के पास गए तो देवकी की इच्छा हुई, भगवान कृष्ण बलराम वहां पर है लेकिन उनके लिए देवकी के दिल में मातृत्व प्रेम नहीं था, क्योंकि स्वर्गमयी भाव था, वात्सल्य भाव नहीं था, स्वर्गमयी वात्सल्य था, लेकिन अपने छह बेटे मर गए थे उनके प्रति वह वात्सल्य था माधुरमयी। तो इसलिए देवकी ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मैंने सुना कि तू संदीपनी मुनि के आश्रम से आने के बाद कि तूने संदीपनी मुनि के पुत्र को जो मर गया था उसको जीवित कर दिया, हमारे जो बेटा, हमारे जो छह बेटे, तुम्हारे छह भाई जो मर गए थे, मैं एक बार देखना चाहती हूं, क्या दिखा सकते हो? कृष्ण का हां मां बिल्कुल। भगवान उन छह गर्भों को जीवित किए और जेव ही वे आए देवकी के अस्तन से दूध चुने लगा, क्योंकि वात्सल्य भाव उमड़ गया। तो भगवान ने कहा, रे लड़े सिपाही नाम सरदार के, मैं इन लोगों को लेकर आया, ऐसे भी छोटा बच्चा मैं हूं तो मेरा हक पहले होता है, ये कौन पीने वाले हैं, पहले मैं पीऊंगा, बाद में पियेंगे। तो भगवान देवकी का अस्तन पान किए, उसके बाद में ये छह लोग अस्तन पान किए और बाद में इन लोगों की मुक्ति हुई। खैर आइए बैक। नारद जी दो कारण से कंस को ऐसा बात कहे, एक कारण कि कंस में यदि सौहार्द आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा तो भगवान को आने में देर होगा, एक कारण यह था। दूसरा कारण था कि श्राप था हिरण्यकश्यपु का कि अपने बाप के हाथ से मारे जाएंगे, तो श्राप विफल नहीं होना चाहिए, चाहे वह श्राप, अरे भाई कथा सुन रहे अच्छा है लेकिन बच्चा बात कर रहा है उधर, देखो माताजी तो कुछ बोल नहीं रही है, तुम ही कुछ बोलो। तो श्राप श्राप होता है, उसका पालन कराना नारद जी का काम था, नारद जी इस भाव से वहां पर गए। अब विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि मरीचि मन के देवता हैं, मन के अधिष्ठात देवता हैं मरीचि, और जो अहंकार काम मिथ्याहंकार, काम क्रोध मद मोह मत्सर्य और लोभ, जो छह हैं ये मरीचि के पुत्र हैं, ये छह मरीचि के पुत्र हैं। तो ये सब आए पहले और असुर रूप में आए थे। देखिए जो व्यक्ति काम क्रोध मोह लोभ मद और मत्सर्य, ये छह जो हैं ये पीड़ा के कारण हैं, ये दुख देते हैं, ये दुख देते हैं, इसको यदि हटाना है, इन छह से पीड़ छुड़ाना है, पीछा छुड़ाना है, तो हमें भक्ति का शरण ग्रहण करना चाहिए। और बलराम जी भक्ति दाता हैं, भक्ति देने वाले बलराम जी हैं, तो इन लोगों से पीड़ छुड़ाने के लिए, देवकी बड़ी पीड़ित थी, दुखी थी, तो भगवान देवकी के दुख से दुखी होकर के भक्ति के दाता बलराम जी को भेजे। और भगवान को कोई जान सकता है? भगवान आते हैं किसी के बस में तो भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस अस्मितत्वतः। तो भगवान आने वाले थे लेकिन भगवान के आने से पहले भक्ति होना जरूरी है, तो देवकी जी में भक्ति स्थापित करने के लिए बलराम जी आए हैं। बलराम जी के आने का कारण यह श्लोक को यहां पर मैं थोड़ा विराम करूंगा, दूसरे रूप में लेंगे, जो कि मैं कहा ये जन्म प्रकरण में आ जाएगा, क्यों आए, कारण क्या था, वो सेकेंडरी करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बलराम तत्व। बलराम जी कौन हैं? मैंने कहा कि इसको छह भागों में ले चलेंगे। आज फास्टिंग है तो चिंता मत करो, चलते रहने दो गाड़ी को, आप मैं गाड़ी चलाऊंगा लेकिन सोना आप लोग नहीं, सो जाओगे हम भी सो जाएंगे, क्या अगर गड्ढा में गाड़ी गिर जाएगा। हरे कृष्णा। सो बलराम तत्व, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में सनातन गोस्वामी से भगवान चैतन्य महाप्रभु बलराम तत्व का उल्लेख किए हैं, वैसे ही चैतन्य चरितामृत के आदि लीला की पांचवें अध्याय में भगवान नित्यानंद प्रभु और बलराम जी के तत्व का निरूपण किया गया है। उसमें से कुछ प्यार लेकर के उस पर हम लोग विचार करेंगे। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। कृष्ण समस्त अवतारों के मूल कारण हैं, वे अवतारी हैं, स्वयं भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनके द्वितीय स्वरूप जो हैं वो हैं बलराम जी। यही बलराम जी आदि चतुर्भुजों में वासुदेव, शंकरसण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न में से शंकरसण है, वैकुंठ में द्वितीय चतुर्भुज में वासुदेव, महाशंकरसण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है, और वही महाशंकरसण इस संसार में आते हैं तीन रूप में, वे कहलाते हैं पुरुषावतार, यानी कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु। और वही शंकरसण, वही बलराम जी शेष के रूप में आते हैं, जो कि पृथ्वी का धारण किए हैं, पृथ्वी को धारण किए हैं और भगवान के लीला में यहां पर इस संसार में सहायता करते हैं। शेष श्री बलराम गोसाई मूल शंकरसण, पंच रूप धरि करे कृष्ण र सेवन। करभाजन अरे पंडिताइन को बोलो शांत रहे, दरवाजा खोल कर बात क्यों करती है, बंद कर बात करो, क्या बुद्धि है। बलराम गोसाई, बलराम जी मूल संकर्षण हैं, प्रथम चतुर्व्यूह का बात कहा गया है। पंचरूप धरि करे कृष्ण रे सेवन, ये पांच रूप में कृष्ण का सेवा करते हैं। अपने करे न कृष्ण लीला रासहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारकाय। तो प्रथम संकर्षण के रूप में स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एक्सपेंशन में सहायता करते हैं संकर्षण जी। जैसे मटेरियल वर्ल्ड का एक्सपेंशन है, वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक्सपेंशन है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक्सपेंशन बलराम जी करते हैं संकर्षण के रूप में, और मटेरियल वर्ल्ड का एक्सपेंशन भी बलराम जी करते हैं महासंकर्षण तीन रूप में, कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु। इस प्रकार से चार रूप में उनका सृष्टि कार्य है, और पांचवा रूप जो है शेष अनंत, वह स्वरूप जो है वह उनके लीला में सहायता करने के लिए है, वो भी इस संसार में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बलराम जी, लेकिन यहां पर शेष के रूप में आते हैं। সৃষ্টি আদিক সেবা তার আজ্ঞার পালন, শেষ রূপে করে কৃষ্ণ বিবিধ সেবন, শেষ রূপে বিভিন্ন প্রকার কৃষ্ণ কা সেবা করতে হ্যাঁ। একই স্বরূপ দেহ ভিন্ন মাত্র কায় আদ্য কায় বিহু কৃষ্ণ লীলার সহায়, দোনো এক হি হ্যাঁ লেকিন মাত্র রঙ ভেদ হ্যাঁ, কৃষ্ণ শ্যামলে হ্যাঁ ওর বলরামজি গোরে হ্যাঁ। আশ্চর্য হ্যাঁ, মানে বিষ্ণু পুরাণ মে পড় রা থা বহুত পহলে বর্ণন কিয়া গিয়া থা কি যে ব্রহ্মাদি দেবতা লোক ক্ষীর সাগর পর যা করকে ধ্যান তপস্যা কর রহে থে, ভগবান কা স্তুতি কর রহে থে, তো উস সময় উনকো দো কমল প্রাপ্ত হুয়া, এক নীল কমল আর এক শ্বেত কমল, আর এই যে দোনো কমল হুয়ে ইহাঁ পর এক কৃষ্ণ হুয়ে আর এক বলরাম, লেকিন অন্য কহীঁ পর বর্ণন কেবল ওহীঁ পর বর্ণন অন্য কহীঁ বর্ণন নহীঁ, তো ভাগবত প্রমাণ হ্যাঁ ভাগবত মে নহীঁ হ্যাঁ ইসলিয়ে হম উসকো ড্রপ করতে হ্যাঁ। অব থোড়া আগে বড়তে হ্যাঁ, সচিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান কা স্বরূপ হ্যাঁ, কেসে অভিন্ন হ্যাঁ ইস বাত কো মে সমঝানে কা প্রয়াস করুঙ্গা কি কৃষ্ণ সে বলরামজি অভিন্ন হ্যাঁ, ইয়ানি বিনা বলরাম কে কৃষ্ণ কা অস্তিত্ব নহীঁ হ্যাঁ। এ যে ছ ঐশ্বর্য হ্যাঁ ভগবান কা হম মতলব বতলাতে হ্যাঁ, যে ছ ঐশ্বর্য হ্যাঁ এ বলরামজি হি হ্যাঁ, বলরাম কে এক্সপেনশন হ্যাঁ এ ছ ঐশ্বর্য। ভগবান কা স্বরূপ হ্যায় সচ্চিদানন্দ, সত চিত ওর আনন্দ, জিসমে জো সত হ্যায় ও হ্যায় বলরাম, চিত জো হ্যায় ও হ্যায় কৃষ্ণ, ওর আনন্দ জো হ্যায় ও হ্যায় শ্রীমতী রাধারানী, ইন তিনো কে সাথ মে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ ভগবান হ্যায়। তিনো মে সে এক কম হো যায় তো ও কবি কম হোতা হি নহীঁ হ্যায়, সবালে নেই তো লেটস নট স্পেকুলেট। এ তিন ইসকা উদাহরণ দিয়া যা সকতা হ্যায় রসগুল্লা কা, কিতনে লোগ রসগুল্লা খায়ে হো, জো নহীঁ খায়ে হোগে বিনা মে যাকর খা লেনা হ্যায় বাদ মে অভি নহীঁ। রসগুল্লা কা, রসগুল্লা ভগবান কি তিন শক্তিয়া হ্যায়, সম্বিত সঙ্গীত ওর আহ্লাদিনী, সত পোটেন্সি জো হ্যায় বলরামজি ওই ভগবান কে সম্বিত শক্তি হ্যায়। কিসকা বজ রহা হ্যায় মাতাজি, বন্ধ করো মোবাইল হ্যাঁ। অনন্তশেষ আপ নাই হো না, আপনি পত্নী ফোন কর রই হ্যা, আপনি ফোন কর রে হো, আর চিত জো পোটেন্সি হ্যায় সঙ্গীত শক্তি শক্তি সে পরিপূর্ণ হ্যায়, আনন্দ ইয়ানি শ্রীমতী রাধা রানী জো হ্যায় ও ভগবান কি আহ্লাদিনী শক্তি হ্যায়। রাধা রানী আহ্লাদিনী শক্তি, বলরামজি সম্বিত শক্তি, আর কৃষ্ণ স্বয়ং সঙ্গীত শক্তি সে পরিপূরিত হ্যায়। মানে রসগুল্লা কা উদাহরণ দিয়া, রসগুল্লা মে এক তো মেটেরিয়াল চাহিয়ে, রসগুল্লা বানানে কে লিয়ে হরা রস ক্যা ক্যা চাহিয়ে, শকর চাহিয়ে, দুধ চাহিয়ে, গ্যাস চাহিয়ে, পানি চাহিয়ে, হ্যাঁ খানে ওয়ালা নহীঁ চাহিয়ে, অভি বানানে কে বাত কর রহা হুঁ, কড়াহি চাহিয়ে, হ্যাঁ আগ চাহিয়ে, ইয়ানি রসগুল্লা বানানে মে জিন জিন বস্তুও কি আবশ্যকতা হতি হ্যায় ও জুটানা জো হ্যায় ও বলরামজি কে কাম, ঠিক হ্যায়। অব রসগুল্লা বানানা গোলা হোগা লম্বা হোগা চওড়া হোগা আকার দেনা কেসা হোনা চাহিয়ে কিতনা চিনি ডালনা চাহিয়ে এ সব এই যো কাম হ্যায় ও স্বয়ং কৃষ্ণ করতে হ্যায়। সঙ্গীত उसको जुटा करके स्वरूप देना। अब रसगुल्ला खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कैसा है, इसका स्वाद कृष्ण लेते हैं श्रीमती राधिका के द्वारा, आह्लादनी शक्ति के द्वारा। तो इसमें से सम्मिलित शक्ति हैं बलराम जी, जुटाते हैं, वस्तुओं को लाते हैं, देते हैं कृष्ण लीला में सहायता करने के लिए। एनीवे, तो मैं संक्षिप्त में तत्वतः बलराम जी को मैं यहीं छोड़ देता हूं। और इसके पहले बतला दिया कि किस प्रकार से जो पांच रूप में यहां पर रहते हैं, चार रूप में सृष्टि में सहायता करते हैं और एक रूप में उनके लीला में भाग लेते हैं। अब जन्म का बात, बलराम जी नित्यतः वे रोहिणी जी के पुत्र हैं, क्योंकि यहां पर परीक्षित जी का यही प्रश्न था, रोहिण्या तनय प्रोक्तो, कहा गया है कि बलराम जी रोहिणी जी के तनय हैं, बोहिणी जी के पुत्र हैं। तो प्रश्न आता है कि भटक करके गलती से वो देवकी घर में कैसे आ गए, प्रश्न हो सकता है। वे आए थे दो कारण से, एक कारण था कि षड गर्भ आए थे जो असुर थे, असुर लोग गंदे होते हैं, तो भगवान उस स्थान पर जाना नहीं चाहेंगे जहां गंदगी हो, जब दिल साफ हो तो भगवान रहेंगे। हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम, जो सुहृत हो जाएगा, हृदय साफ हो जाएगा, तब भगवान वहां पर विराजेंगे। और भगवान को कोई खींच सकता है तो वो है भक्ति देवी। तो देवकी के यहां पर आए एक काम यह करने के लिए, सिक्योरिटी संजय तू कथा सुनना बाद में, पहले यहां पर आप सेवा करो, ये माता जी के चार बच्चे लोग बात कर रहे हैं इधर। हाँ जी, क्या बोल रहा था, इसलिए हम कानपुर में सेपरेट क्लासरूम बना रहे हैं ताकि दर्शनार्थी हल्ला करते रहें, उधर गड़बड़ नहीं हो, क्लासरूम में सेपरेट होना चाहिए। आगे बढ़ गया था, मैं जानता हूं क्या बोल रहा था, लेकिन जानना आप लोग सुन रहे हो कि नहीं है? हाँ, शुद्ध करने के लिए, देवकी के उस उदर को शुद्ध करने के लिए, गर्भ को शुद्ध, जहां भगवान अब आने वाले थे, भगवान आने वाले थे, तो सफाई मंत्री का काम किए बलराम जी, आकर के सफाई उफाई करना ये काम किए, यानी भक्ति प्रदान किए बलराम जी, एक काम यह। दूसरा काम था कंस को भ्रम में रखना, कंस को भ्रमित करना, क्योंकि बलराम जी तो वहां रहने वाले हैं नहीं, वो तो नित्यतः रोहिणी जी के पुत्र हैं, तो रोहिणी घर में जाएंगे, तो इसका मतलब देवकी का सातवां गर्भ च्युत हो गया, तो अब आठवां जो गर्भ हुआ उसको आठवां कहा जाएगा कि सातवां कहा जाएगा? किसी कोई व्यक्ति है, उसके पांच बेटे थे, एक मर गया, बोले कितने बेटे हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, चार है, यही ना, कोई नहीं बोलता कि पांच थे लेकिन एक मर गया, कोई बोलता है ऐसा, नहीं बोलता है, कितने बेटे हैं, चार हैं, जो चला गया चार। तो कंस को भ्रम में डालने के लिए कि कृष्ण सातवें हैं कि आठवें हैं, इसलिए बलराम जी वहां पर सातवें गर्भ में आए। प्रश्न उठता है कि अब यहां पर ये जो श्लोक है सप्तमो वैष्णवम धामम, चलिए यहां पर श्लोक पर आइए, यम अनंत प्रत्यक्षते गर्भो बबूह देवक्या हर्ष शोक विवर्धनम। सप्तमो वैष्णव धाम, ये विष्णु के निवास स्थान हैं, विष्णु के चरण हैं, विष्णु के सेवक हैं। ये सातवें गर्भ के रूप में आए, जिनका नाम है यम अनंत अप्रत्यक्ष, जिसे अनंत कहा जाता है। गर्भो बहुव देव क्या, देवकी के गर्भ में वे आए थे, वे आए वहां पर। क्यों? हर्ष शोक विवर्धनम। जब बलराम जी देवकी के गर्भ में आए तो उन्हें बहुत हर्ष हुआ। संसार में दुख तब तक से है जब तक से काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर्य से हम लोग भरे पड़े हैं, लेकिन ज्यों ही भक्ति देवी आ जाती है जिसके दिल में, वो व्यक्ति प्रसन्नचित हो जाता है। केवल आनंद कंद, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हर्ष, देवकी को हर्ष हो रहा था, और शोक, देवकी को शोक भी हो रहा था, क्योंकि देवकी के छह बेटे मारे गए थे। कहा जाता है जब दूध से मुंह जल जाता है तो लोग छाछ को फूंक फूंक कर पीते हैं। छाछ ठंडा होता है लेकिन फिर भी लोग डरते हैं कि कहीं से ही मेरा मुंह मन जल जाए, उजला है तो है? मुझे एक कहानी याद आ रही है अकबर और बीरबल की। कहूं नहीं कहूं, चलो इसी को अकबर बीरबल को मरने दो, अभी इसे कहते हैं। अब लोग समझे कहने का मतलब ना, जब दूध से मुंह जलता है तो छाछ फूंक कर लोग पीते हैं। तो बेचारी देवकी आठ बच्चों को अपने सामने मरते हुए देखी थी, उसे हमेशा संदेह था इस बालक पर कि इसको भी मारेगा, इसको भी मारेगा, इसको भी मारेगा। यही देवकी के शोक का कारण था, हर्ष का कारण था, क्योंकि भक्ति मई हो गई थी देवकी। उनके गर्भ में भक्ति दाता बलराम जी आए थे, तो जिसको भक्ति चाहिए बलराम जी से मांग लेना चाहिए। भक्ति दाता हैं बलराम जी, आदि गुरु हैं। कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार तुम्हारा स्वकति आछे, आदि गुरु बलराम जी हैं, तुमसे भक्ति प्राप्त करना चाहिए। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि विश्वात्मा वित्वा कंस जंभयम यदुनाम निज नाथानाम जोगमाया समाधि सत। भगवान जब देवकी के, भक्ति देवी के आने के बावजूद भी देवकी दुखी थी, और कंस के प्रताड़ना से, कंस के प्रताड़ना से यदुवंशी लोग जो भगवान के भक्त हैं वे भी बड़े दुखी थे, उन भक्तों पर दया कर करके प्रभु अब आने का विचार बना लिए। लेकिन आने से पहले यह सूर्य आते हैं, सूर्य से पहले प्रकाश आ जाता है, सूर्य को बतलाने के सूर्य आ रहे हैं, वैसे ही भगवत प्रकाश जोग माया को भगवान भेज रहे हैं। कौन बात कर रहा है पीछे? गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभी अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्यः भार्या ते नंद गोकुले अन्याश्च कंसं विघ्ना विवरेषु वसन्तिः देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय। भगवान आदेश दे रहे हैं जोग माया को, कहते हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, हे देवी तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब्रज में जाओ। 84 कोस ब्रज में कहां जाऊं प्रभु, कहां जाऊं? नंदगांव जाऊं, बरसाना जाऊं, कहां जाऊं? तो भगवान कहते हैं गोप गोभी अलंकृतम नंद गोकुले, तू नंद गोकुल में जाओ, जहां नंद बाबा निवास करते हैं, गोकुल में जाओ और गोकुल का महिमा गाए हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान गोकुल का वर्णन करते हैं, गोकुल कैसा है, कहते हैं गोप गो भी अलंकृतम, गोप मतलब ग्वाल बाल, गौवे से अलंकृत है, यानी दूध दही शुद्ध मिलेगा, पानी वाला दूध नहीं मिलेगा, प्लास्टिक वाला दूध नहीं मिलेगा, शुद्ध दूध गोकुल में मिलेगा। आजकल मिलता है, वहां भी नहीं मिलता है, उस समय था। और ग्वाल बाल लोग हैं गोप, गोप का मतलब होता है जो तृप्त हैं, यानी कंजूसी नहीं करेंगे देने में, जो इंद्रियों से तृप्त हैं। और दूसरा अर्थ होता है गोप का कि तुम्हारी इंद्रियां भी संतुष्ट होगी, वे भी संतुष्ट हैं और तुम भी संतुष्ट हो सकती हो, यानी दूध दही से। प्रभुपाद जी भी कहते हैं किसी व्यक्ति के पास 2 एकड़ जमीन और एक गाय हो तो संसार में सुखी व्यक्ति वही है, कोई बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है, 2 एकड़ जमीन और एक गाय, दूध मिल गया, खाने पीने का क्या चाहिए। लेकिन हाय हाय लोगों को मार रहा है। तो मानो कह रही है, भगवान कहते हैं कि रोहिण्य वसुदेव भार्या ते नंद गोकुले, उसी नंद गोकुल में वसुदेव जी की एक पत्नी है जिसका नाम है रोहिणी। वसुदेव जी की अन्य पत्नियां थी, अन्य सब कंस के भाई से इधर उधर थी, लेकिन रोहिणी जी वहां पर थी। तो मानो जोगमाया पूछती है कि प्रभु मेरा काम क्या है, कहते हैं देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्या धाम मामकम तत्सन्निकृष्ट रोहिणिया उदरे सन्निवेशये। देखिए दो शब्द है, जठरे और उदरे, इन दोनों शब्दों का मैं व्याख्या करूंगा। जठर वह स्थान है जहां पर अग्नि निवास करती है, जिसे कहते हैं जठराग्नि। जब खाते हैं ना तो उसको साफ करने का काम, बलराम जी अग्नि स्वरूप हैं, इसीलिए इनका क्वार्टर बना जठर प्रदेश, जहां पर अग्नि है, और अग्नि काम है सफाई करना, तो बलराम जी सफाई करने गए थे। यदि उदर में गए होते तो गड़बड़ हो जाता, तब वहीं रह जाते, जठर में गए, देवकी के जठर में गए, उदर में नहीं गए। और उधर कहा जाता है तो सन्निकृष्ट रोहिणिया उदरी सन्निवेशय, और रोहिणी के उदर में स्थापित करो, क्योंकि बच्चा जो होता है उदर से जन्म लेता है, जठर से जन्म नहीं लेगा, उदर से जन्म लेगा। तो बलराम जी देवकी के जठर में थे, जिनको निकाल करके कहते हैं सन्निवेश, देवक्या जठरे गर्भ शेष आख्यम, अगेन शेषाख्यम धाम मामका, तन सन्निकृष्य, ऐसे निकालना, ऐसे निकालना कि पता भी न चले। गर्भच्युत होता है तो अभी दर्द करता है, तो कहते हैं ऐसे निकालना कि देवकी को पता भी न चले, और रोहिणी के गर्भ में ऐसे स्थापित करना कि सन्निवेशयत, सम्यक रूप से निवेशित कर देना ताकि उसको ही पता ना चले। अब यहां पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि रोहिणी जी तो गोकुल में थी और बहुत दिन से थी गोकुल में, तो बलराम जी कैसे उनके पुत्र हो गए, वसुदेव जी से कोई मुलाकात नहीं थी तो उनके पुत्र कैसे बलराम जी हो गए। आचार्यगण दो उत्तर दिए हैं, एक उत्तर यह दिए हैं कि 7 गर्भों तक कंस देवकी और वसुदेव को हाउस अरेस्ट किया था, पैलेस में ही रखा था। रोहिणी जी का सम्मान सब लोग करते थे, रोहिणी जी कुरुवंशी थी, हस्तिनापुर नरेश की बहन, भाई बहली की पुत्री थी, और वहां सम्राट थे, यानी सर समझ लिए कि हस्तिनापुर नरेश प्राइम मिनिस्टर और कंस के बाप दादा ये चीफ मिनिस्टर थे, तो स्वाभाविक है चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करेंगे। तो रोहिणी का बहुत सम्मान था, तो रोहिणी कभी भी आ जा सकती थी, और पैलेस था, पैलेस में बहुत रूम थे, रोहिणी का भी अपना रूम था, तो अपने पति का सहवास की और उस प्रकार से गर्भवती हुई। एक आचार्य कहते हैं कि देखिए ये तो जोग माया लाकर के स्थापित की, 7 महीने तक भगवान देवकी के जठर में थे और रोहिणी के गर्भ में उदर में केवल हवा था, और जोग माया ला करके स्थापित की। लेकिन इसको कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए आचार्यगण पहले को ही सत्य मानते हैं। दोनों सत्य है, लेकिन पहला ज्यादा प्रमाणिक है कि वो आ जा सकती थी, पति के पास मिल सकती थी। तो इस प्रकार से भगवान जोग माया को आदेश दिए तो यह काम करो। और जोग माया वह कार्य की, तो इस प्रकार से भगवान अब आए रोहिणी जी के उदर में, गर्भ में। अब चलिए बलराम जी के जन्म पर हम लोग अब विचार करेंगे। जन्म तत्व का विचार हो गया, अब उदर में आ गए, अब वहां से जन्म लेंगे उसका विचार होगा। तो इससे पहले जरूरी है कि बलराम जी के वंश को जानना चाहिए। बलराम और कृष्ण का वंश प्रकरण इस प्रकार से है। विष्णु वंश में भगवान बलराम जी आए थे, वर्णन है जदु पुत्र थे क्रोष्टा, क्रोष्टा की 2 पत्नियां थी, माद्री और गांधारी। क्रोष्टा की पत्नी माद्री से 2 पुत्र हुए, युधाजी और देवमीढ़। युधाजी के 2 पुत्र हुए विष्णु और अंधक, और विष्णु के दो पुत्र हुए स्वफलक और चित्रक, और स्वफलक के पुत्र हुए गांधिनी अक्रूर जी, जो 15 भाई थे और एक बहन थी जिसका नाम था बरांगना। और युधाजी को छोड़ दीजिए, आगे आइए देवमीढ़ का। देवमीढ़ की पत्नी थी नाग कन्या जिनका नाम था अश्वमकी, यानी भीम जी के नानी हुई ना, नाता जुड़ा है, तो भीम जी की नानी। तो भीम गए थे नागलोक में ना, तो पता चला रे ये तो अश्वमकी के पुत्री कुंती का बेटा है, तब उनका खान पान ज्यादा अच्छा से हुआ वहां पर ना, उनका सत्कार हुआ था। तो ये नाग कन्या थी अश्वमकी। देवमीढ़ और अश्वमकी से महाराज सुरसेन का जन्म हुआ, और सुरसेन के पत्नी का नाम था महिषा, जो कि भोज राजकुमारी थी, भोजपुर की थी। सुरसेन और महिषा से 10 पुत्र हुए और 5 पुत्रियां हुई। 10 पुत्र थे अनकदुंद भी वसुदेव जी, देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कनवक, वसामन, ग्रिंजय, श्याम, समीक, गंडुस, ये 10 पुत्र थे। और 5 पुत्रियां थी प्रथा, श्रुतदेवा, पृथुकृति, श्रुतसर्वा, राजादिदेवा। इसमें से कई एक लोगों के संतान नहीं थे, और कृष्ण के जो संतान थे वे उनके संतान हो गए थे। अब ये जो 5 बहन थी, इनमें से प्रथा का विवाह महाराज पांडु से हुआ, सुदेवा का जुग्रुव पुत्र से हुआ, पृथुकृतु का करु नरेश दंतवक्र जिनका पुत्र हुआ, भद्रा नाम की एक कन्या थी जो कृष्ण की पत्नी बनी, इस प्रकार से ये वर्णन किया गया है। और वसुदेव जी के 10 पुत्र जो थे, सॉरी सुरसेन के जो 10 पुत्र थे उसमें से वसुदेव जी प्रथम थे। वसुदेव जी की 14 पत्नियां थी, जिसमें रोहिणी जी सबसे बड़ी थी। रोहिणी, इंद्रा, वैशाली, भद्रा, सुनामी, ये 5 पत्नियां कुरुवंशी राजकुमारी थी, जो महाराज शंतनु के बड़े भाई बहलिक की पुत्रियां थी। महाभारत में बहलिक जी लड़ाई किए थे। सहदेवा, शांतिदेवा, श्रुतिदेवा, देवरक्षिता, बृकदेवा, उपदेवा तथा देवकी, ये 7 देवक की पुत्रियां थी। और सुतनु और बलवा ये 2 दासियां थी। ये सब मिला करके 12 पत्नी और 2 दासी यानी 14 पत्नियां वसुदेव जी की थी। वसुदेव जी और रोहिणी से 8 पुत्र और 1 कन्या जन्म ली, जिसमें प्रथम बालक थे बलराम, सारठ, सठ, दुर्मम, दमन, शभ्र, पिंडारक, उसिनर तथा चित्रा नाम की एक अप्सरा थी जो जन्म ली थी। लेकिन जन्म लेते ही उसका देहांत हो गया, लेकिन उसकी प्रबल इच्छा थी कि मैं कृष्ण के लीला में भाग लूं। इसीलिए जब कंस मारा गया, सब चौर से एक तरह से मथुरा रक्षित था, उस समय वही जो कन्या थी, अप्सरा जो थी, वह बाद में सुभद्रा के रूप में जन्म ली। अब देवभाग के पुत्र थे उद्धव, जो कि आप लोगों को जानना अच्छा होगा। देवश्रवा के पुत्र थे शत्रुघ्न, लेकिन बचपन में ही वे बाप मां से अलग हो गए थे, जंगल में कहीं भूल गए थे और निषादों ने उनका पालन किया और बाद में उनका नाम हुआ एकलव्य, जो कि कृष्ण के चचेरे भाई थे। और अनमित्र के थे निशी, निशी के सत्यक और उनके पुत्र थे सात्यकी, और अन्य का कोई संतान नहीं था। तो इस प्रकार से बलराम जी के जन्म का यहां पर थोड़ा हरिवंश पुराण से मैंने विवरण किया। अब गोपाल चंपू में वर्णन किया गया है बलराम जी के जन्म और वो कैसे दिखाई पड़ रहे थे, तो श्लोक के ऊपर व्याख्या करने के बजाय मैं सोचा कि डायरेक्टली पढ़ लेता हूं, समय भी कम है। शुभ्राम सुवक्त्रम तजिदालिलोचनम नवाब्दकेशम सरदाभ्रविग्रहम भानु प्रभावम तनुसूत रोहिणी ततश्च युक्तम सहि दिव्य बाल। अनंतर जोग माया ने रोहिणी के सप्तम मास गर्भ को नष्ट करके उनके श्री देवकी का 7वां मास का गर्भ स्थापित कर दिया। फिर अत्यंत सुसमय संपदित दशायुक्त 14वें श्रावण मास के प्रथम अर्ध में श्रावण नक्षत्र में समस्त सुख लाभकारिणी श्री रोहिणी ने अतिशय शुभ्रता रूप गुण में विराजित होकर शीतल शुभ्र चांदनी का विस्तार कर पूर्णिमा जैसे चंद्रमा को प्रसव करती है। विक्रम की प्रणाली दिखाकर सिंह जैसी सिंह शावक को प्रसव करती है। निर्मल परिमल धारा की आधार बनकर नवकमलिनी जैसे श्वेत पद्म को प्रसव करती है। एवं स्वच्छ विद्या श्रवण मात्र से ही सबको अमंगल प्रदान करती हुई जैसे यशो राशि की उत्पत्ति करती है, उसी प्रकार गुण समन्वित परम सुंदर एवं समस्त परम शोभा राशि को पराजित करने वाला शुभ्र वर्ण वाली एक पुत्र प्रसव किया। अलंकारिक भाषा में है बलराम जी के जन्म का यहां पर गोपाल चंपू में वर्णन किया गया है। आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बात रहा नामकरण का। जब वसुदेव जी गए थे मथुरा कंस को कर चुकाने के लिए, बच्चे बड़े हो गए थे, वसुदेव जी जब आ गए तो वसुदेव जी ने नंद बाबा कहा था कि बच्चों का अब नामकरण हो जाना चाहिए। और उपयुक्त समय देख करके वसुदेव जी गर्गाचार्य को बुलाए और वे नंद गोकुल भेजे। जब गर्गाचार्य गोकुल आए, भागवतम के आठवें दशम स्कंद के आठवें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। जब गर्गाचार्य वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर के वे गोकुल आए, देखिए जान खतरे का मोल लेकर गर्गाचार्य अब गोकुल जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो प्रभु का दर्शन करने के लिए, भगवान का भक्ति करने के लिए हम कोई रिस्क उठा सकते हैं? तो गर्गाचार्य, गर्ग पुरोहित राजन यदुनाम सु महातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। वसुदेव जी के बाद प्रचोदित होकर के सलाह दिए जाने के बाद वे सुबह सुबह निकले थे, रात को, रात भर चलते रहे गर्गाचार्य, दिन में नहीं गए, नहीं तो कंस का कोई दूध देख देता। रात भर बेचारे आए, चलते आए, जमुना जी को तैर करके पार किए, नौका से ही पार नहीं किए, अर्ली मॉर्निंग आए, और वो भी नंद बाबा के घर नहीं गए, सीधे वहां पर गए जहां नंद बाबा गोदोहन कर रहे थे, और कृष्ण और बलराम नंद बाबा के साथ डेली बछड़ा पकड़ने जाते थे। आप में से कितने लोग गाय दुहे हाथ उठाओ? तो बहुत कम लोग। अच्छा, गाय दुहते हुए कितने लोग देखे हो, ये तो बताओ कम से कम। हाँ, हरास तुम नहीं देखा है, तो बॉम्बे वाला है क्या? बॉम्बे वालों को मालूम नहीं है गाय कैसे दुहा जाता है और गाय का दूध कैसा होता है, वो मालूम नहीं, उजला होता है बस इतना ही। वो देखें उजला होता है, चाहे चूना का पानी हो, चाहे कुछ, उजला होना चाहिए, वो दूध है, पैकेट में मिले चाहे कैसे ही मिले। एनीवे, जब गाय के स्तन को उसका बच्चा स्पर्श करता है तो गाय अपने दूध को नीचे लाती, नहीं तो चुरा लेती है, नीचे लाती है। तो थोड़ा पिलाते हैं ग्वाले लोग और बाद में बछड़ा को खींच लाते हैं। तो गाय दूहने में दो आदमी जरूर चाहिए। बछड़ा को खींचा उसी समय दूहना शुरू हो जाना चाहिए, नहीं बछड़ा बांध करके आ उतना में तो गाय दूध चुरा लेगी, वो भी चलाक होती है। तो कृष्ण बलराम का काम क्या था कि बछड़े को हटा करके ले जा करके बांधना। और ऑफ कोर्स जो गाय को आप ज्यादा स्नेह और प्यार देते हो, खिलाते हो, तो बिना बछड़ा के भी दूध देते कि वो कोई बड़ा बात नहीं है, उन्हें प्यार चाहिए, बेसिकली प्यार से दूध देती है। तो कृष्ण बलराम बछड़ों को ले जाते थे और दूहना भी थे। देखते थे कैसे पिता ये दूह रहे हैं, वो चाहे और ग्वाल लोग दूह रहे हैं, वो सीख रहे थे, कृष्ण बलराम गाय भी दूहे हैं। तो गर्गाचार्य वहां पहुंच गए अर्ली मॉर्निंग, तो वहां पर नंद बाबा थे, कृष्ण और बलराम थे, अन्य कोई नहीं था। तो गर्गाचार्य को देख करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें वसुदेव जी का वचन याद आया कि उन्होंने कहा था कि बच्चों का नामकरण हो जाना चाहिए। तो और तक से कृष्ण का भी नामकरण नहीं किए थे, क्योंकि बलराम जी बड़े थे, तो बड़े भैया का नामकरण नहीं, छोटे बच्चे कैसे हो जाएगा? बड़े बेटी का शादी नहीं हुआ, छोटी बेटी की शादी कैसे हो सकता है? ठीक वही सिद्धांत वहां पर, बड़े भाई का नामकरण नहीं हुआ तो छोटे का, आजकल वो नहीं चलता है, बड़ी बेटी भले विवाह ना हो, छोटी पहले जल्द कर विवाह कर लेगी अपना, जमाना बदल गया है। तो जब आए जात संस्कार करने के लिए, नंद बाबा ने कहा, तब मन ही मन गर्गाचार्य बहुत खुश हुए, कहे कि मन में सोच रहे हैं कि भिक्षुक जिस वस्तु में मन लगा करके आता है, दाता बिना मांगे देने के लिए तैयार हो जाता है, तो कितना बड़ा सौभाग्य है उस भिक्षुक का। मैं तो आया था कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए, इनका नामकरण करने के लिए, मैं कहता कैसे? लेकिन वसुदेव जी, सॉरी नंद बाबा स्वयं कह दिए। वसुदेव जी को मालूम था कि कृष्ण उनका बेटा है, वसुदेव जी को मालूम था कि बलराम उनका बेटा है, दोनों क्षत्रिय कुमार हैं, इसलिए इन लोगों का नामकरण कैसे होना चाहिए, क्षत्रिय विधि विधान से। सांडल्य मुनि नंद बाबा के पुरोहित थे और गर्गाचार्य वसुदेव जी के पुरोहित थे, तो नियम के अनुसार सांडल्य मुनि को चाहिए था कृष्ण का नामकरण करना और गर्गा मुनि को चाहिए था बलराम का, क्योंकि एक वैश्य पुत्र है और एक क्षत्रिय पुत्र है, लेकिन वसुदेव जानते दोनों क्षत्रिय पुत्र हैं, इसलिए दोनों का क्षत्रिय विधि से होना चाहिए। जब उन्होंने कहा तब गर्गाचार्य ने कहा कि नहीं, ऐसा करना उचित नहीं होगा, आप जानते ही हैं यदुनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्नते देवकी सुतम। कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हो, नामकरण संस्कार करना चाहिए बच्चों का, और मेरी भी इच्छा है कि मैं इन लोगों का नामकरण संस्कार करूं, लेकिन एक समस्या है। तो नंद बाबा ने कहा क्या समस्या है, कहते यदुनाम अहम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, ख्यातश्च हूं सर्वतः, पृथ्वी में सब लोग जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, श्रुतम मया संस्कृत्यम, यदि मेरे द्वारा आपके बेटे का नामकरण संस्कार हो जाएगा तो कौन समझ जाएगा कि देवकी के बेटा है कृष्ण, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि रे मूर्ख कंस तुम मुझे क्या मारेगा, तुम्हें मारने वाला कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। देखिए गर्गाचार्य को मालूम था कि कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, वसुदेव को मालूम था और देवकी को, तीन को ही मालूम था, यहां पर कह दिए कि यदि ये पता चल जाएगा तो कौन समझेगा कि यही देवकी का पुत्र है और इसे मारने का भरसक प्रयास करेगा। कंसम पापमति सख्यम तवचा अनक बिंदवे देव क्या अष्टभो गर्भ न स्त्री भावितु मरहती। आप कहीं छिपाने का प्रयास करें, कंस को पता जरूर मारने के लिए आएगा। तो नंद बाबा ने कहा इसमें बड़ा बात क्या है, हम बड़ा दंड कमंडल नहीं करेंगे, हम बड़ा व्यवस्था नहीं करेंगे, हम लोग छुप करके नामकरण करेंगे। आलक्षितो अस्मि रहसी माम एकैरपि गोब्रजे कुरुद जातीय संस्कारम स्वस्तिवाचक पूर्वकम। कहते हैं कि देखिए हम लोग एकांत में, आज नहीं कल नामकरण, आज आराम कीजिए, कल अर्ली मॉर्निंग जब ग्वाल बाल लोग गऊ को चराने के लेकर चले जाएंगे तो स्वजातीय केवल हम ही लोग रहेंगे, यानी रोहिणी देवकी कृष्ण बलराम नंद बाबा, केवल पांच ही लोग थे नामकरण संस्कार के समय, और बड़ा कोई बड़ा प्रयोजन भी नहीं, न यज्ञ मंडप बना, न यज्ञ किया गया, स्वस्तिक वाचन के द्वारा संस्कार हुआ। अब इस प्रकार से जब नामकरण हो रहा था तो गर्गाचार्य, कितना सौभाग्य है गर्गाचार्य का कि कृष्ण और बलराम को अपने जंघे पर लेकर के बैठाए। देखिए वहां पर छवि दिखाई पड़ रही है, वहां केवल कितने लोग हैं, पांच लोग हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी, कृष्ण बलराम और गर्गाचार्य, पांच ही लोग हैं। तो अपने जंघे पर बैठा करके ए भगवान, गर्गाचार्य का कितना सौभाग्य है कि पुरुषोत्तम को, परम पुरुष को अपने जंघे पर लेकर के बैठाए हैं। कहते अयम ही, अयम मतलब यह बालक जंघे पर लिए गए, अयम ही मतलब निश्चय ही रोहिणी पुत्रो रमयम सुहृदय गुणौ, ये राम है, सबके दिल में यह निवास करता है। बात बिल्कुल सही कहे, क्योंकि यही बलराम जी सृष्टि लीला में जब क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में आते हैं तो क्षीरोदक साई विष्णु का दो काम है, एक काम है सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करना और दूसरा काम है सृष्टि का पालन करना। तो इस सिद्धांत के अनुसार भी देखा जाए या दूसरा जो हृदय में आनंद होता है वह आनंद परमात्मा के चलते होता है। यदि परमात्मा को आनंद न मिले तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, खूब प्यास लगा है और पानी पीते हैं, भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौन थे, वो आनंद कहां से आया हुआ है? भगवान से आया हुआ है। जो भगवान को आनंद मिलेगा तब ही हमें आनंद मिल सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति आनंद चाहता है उसे सर्वतोभावेन चाहिए बलराम जी को प्रसन्न करें, कृष्ण को प्रसन्न करें। यदि कृष्ण प्रसन्न है तो हम लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पेट में भोजन डालोगे तो शरीर का अंग प्रत्यंग स्फुरित हो जाएगा, पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पेड़ का पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। शॉर्टकट तरीका है खुश रहने का, शॉर्टकट तरीका है शांति प्राप्ति करने का। अयम ही रोहिणु पुत्र रमयं सुहृदो गुणो अख्यास्ते राम इति बल अधिक्य बलम विदुः। सबके दिल में यह बालक निवास करेगा और सबको आनंद देगा, इसलिए इसका नाम राम होगा और बल में इसके समान कोई बलशाली नहीं है, यानी यह सबका रक्षक होगा। तो भगवान सबके रक्षक हैं, जिसके पास बल है वही रक्षा कर सकता है। तो बलराम ही हम लोगों का रक्षा कर सकते हैं। मे लॉर्ड बलराम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माया। जिस प्रकार से बलराम देवकी का रक्षा किए षडगर्भों से, वही बलराम हम लोगों का भी रक्षा करें। तो सबका यह रक्षा करने वाला बालक होगा, इसलिए इसका नाम बल के चलते यह बलराम होगा। जदुनाम अपितक भाव संकर्षणम उसन्नुत। जब भी जदुवंशियों में पृथक भाव उत्पन्न होगा, झगड़ा झंझट होगा, तो सबको मिलाने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। तो इस प्रकार से बलराम जी का नामकरण हुआ। हाँ, ये नामकरण हो गया। अभी समय है ना, चिंता नहीं है ना, प्रसाद मिलेगा, बन रहा है प्रसाद, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, 1 बजे मिलेगा। अब वो हो गया, अब चलिए विवाह का बात। बाल लीला आप लोग कृष्ण बुक से पढ़ लेना। कृष्ण और बलराम सामान्य बालक के समान, ए बामन प्रसाद है अभी नहीं, 1 बजे। अच्छा, यहां से वहां जाएगा, फिर वहां से वहां, वहां से जंप कर जाएगा बाहर। हाँ जी, क्या मैं बोल रहा था? बाल लीला। कृष्ण और बलराम सामान्य बालक के समान लीला करते थे, रोते थे, हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे। कभी कभी जब ब्रजवासियों पर कंस के नाती पोते यानी उनके चेले चपाटी पुतना उतना आकर के परेशान करती थी, तो एका देखो एक दुम का मार्द करके खत्म जाओ, मर जाओ करते थे। तो अनेक लोगों को बध किए, झापड़ मार करके, किसी का आस्तन पान कर करके, किसी के मुंह में प्रवेश करके, ऐसे ऐसे किए। कृष्ण और बलराम ब्रज में जब लीला कर रहे थे तो बलराम जी दो असुरों को मारे ब्रज में, धेनुकासुर और प्रलम्बासुर। जब काल्य दमन हो गया, काल्य का ताड़ी पार हो गया, भगवान ने ताड़ी पर कर दिया, वो चला गया कहां पर? फिजी चला गया, वृंदावन से फिजी चला गया ताली काली। देखिए, जमुना जी में जब तक काली था, जमुना जी को पार करने का किसी का बस नहीं था। विषमत जल था जमुना जी का, कोई उधर जा नहीं सकता, बाउंड्री बनकर कोई जा सकता था। जब काली दमन हो गया, तब काली दमन के बाद दूसरा दिन था, बलराम के अगुवाई में उस दिन बाल बाल लोग आ रहे थे। पहले दिन पट्टा कृष्ण लड़ाई किया था, थक गया था काली से, दूसरा दिन बलराम जी अगुआ थे, कभी कृष्ण अगुआ थे कभी बलराम जी। आज वे लोग जमुना पार कर करके आगे गए हैं, वे ताल वन में पहुंचे। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सब ग्वाल बाल लोग बड़े खुश थे। नए जगह पर जाने से डर भी लगता है और आनंद भी आता है। जब अकेले हो, जान पहचान नहीं है, तो स्थान भयावह होता है। दो चार पांच लोग मिल जाते हैं थोड़ा बल हो जाता है, तो अनजान स्थान भी अच्छा लगता है। तो वहां पर कृष्ण और बलराम थे, इसलिए ग्वाल बालों के लिए वो अनजान स्थान नहीं रह गया था। अनजान होते हुए भी कौतूहल था ग्वाल बालों में, एक एक वस्तुओं को देख करके। प्रथम बार देख रहे थे इतना बड़ा बड़ा घास, और जितने घास थे सब गाय चर गए, छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन इधर कभी गाय आई ही नहीं थी। तो ग्वाल बालों के लिए कितना आनंद था, और गौओं के लिए भी आनंद था। अरे मेरा चश्मा इधर जा रहा है। गौओं को भी आनंद था, गौ भी दौड़ रही थी बड़ा बड़ा घास देख करके। तो उन लोग के ताया ताया घास मिल रहा था, तो गौओं को आनंद था, ग्वाल बालों को आनंद था। ऐसे जा रहे थे और खूब खेल रहे थे। वह जमीन मान लीजिए डल्लप गद्दा जैसा बन गया था, क्योंकि वहां पर धेनुका सूर और खानदान रहता था। तो वो लोग चलते थे तो लगता था कि कुछ चल रहा है, सॉफ्ट हो गया था, और उधर सुगंध भी आ रहा था पके हुए ताल फल का। तो ग्वाल बाल लोग पेट पर हाथ फेरने लगे, कहे कि भैया दाऊ जी और कन्हैया देखो भाई कहीं से गंध आ रहा है, बड़ा सुगंध आ रहा है। हमने सुना है कि यहां पर एक असुर रहता है, कोई व्यक्ति इधर आया नहीं आज तक से। ये तुम लोगों की इच्छा हो, तुम लोगों की इच्छा हो तो हम लोग भी थोड़ा ताल फल को प्राप्त कर सकें। और वहां बहुत ताल फल गिरा हुआ था चारों तरफ एकदम, क्योंकि वहां कोई जाता नहीं था, ये लोग अत्याचार करते रहते थे। तो कृष्ण कहे कि भाई मैं तो थक गया हूं कालिया को मार करके, अब दाऊ जी ही हैं कुछ कर सकते हैं, तो अब आप लोग उनके ही शरण में जाओ। सब दाऊ जी के शरण में गए, क्योंकि धनुकासुर बलि महाराज का खानदान का था, और भगवान ने बलि महाराज को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारे खानदान के किसी व्यक्ति को आज के बाद नहीं मारूंगा। तो इसलिए भगवान छूना नहीं चाहते थे। कहे भगवान बहाना बाद मैं थक गया हूं, कालिया से बहुत लीला बहुत डांस कर लिया हूं, अभी दाऊ जी ही करेंगे काम। दाऊ जी को रिक्वेस्ट किया गया, दाऊ जी कृष्ण सेवा में तत्पर रहते हैं, लेकिन कह सकते हैं थोड़ा लेजी भी, ओ अपने बल से भी काम कर लेते हैं। कौन पेड़ पर चढ़कर तोड़ने जाएगा ताल फल को, वो पेड़ को पकड़े हिलाने लगे जोर से, बड़बड़ 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 सब ताल फल ऊपर से गिरने लगा। जब गिरने लगा तो बहुत आवाज आया, अब धेनुकासुर जगा गई, आवाज कहां से आ रहा है, उसके भी चिल्ले चपाटी से बता दिए कहां से आवाज आ रहा। सब दौड़ते हुए आए प्रहार करने के लिए बलराम जी पर, विभिन्न प्रकार से धेनुकासुर प्रहार किया, और अंत में गद्दा था तो गद्दे लोग तो खच्चर हैं, वो लोग पैर नहीं मारते हैं। बलराम जी सोचा कि चिट्टी क्या काट रही है, लेकिन जब गद्दा पैर मारा तो बलराम जी पकड़े उसका पैर, घुमा करके फेंक दिए झाड़ के ऊपर, मर गया ऊपर ही, जितने सबको मार दिए। संक्षिप्त में आप कृष्ण बुक में पढ़ लेना। इस प्रकार से बलराम जी धेनुकासुर का लीला समाप्त किए। अब उधर भांड्री वन में एक बार ये लोग थे, और वहां पर प्रलंभासुर छिप छिप कर देख रहा था कि कैसे ग्वाल बाल लोग खेल रहे हैं। तो भगवान की लीला बड़ी मनोहर होती है, उसकी भी इच्छा हो गई कि मैं इस लीला में भाग लूं। भले असुर था लेकिन उसकी इच्छा हुई थी। भगवान उसको स्वीकार किए तीन कारण से, आचार्यगण कहते हैं। पहला कारण था कि उसकी इच्छा थी कि मैं भी खेल खेलूं देख करके। हम लोग फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं, लेकिन देखते हैं फुटबॉल खेलते हैं, मन करता है हम भी फुटबॉल खेल लें, मन करता है, कर नहीं सकते लेकिन मन करता है। तो उसका इच्छा किया, तो भगवान अरे पुतना बलि महाराज की पुत्री थी, इच्छा की, भगवान ने कहा ठीक है मेरा स्तन पान कर लेना। तो उसने इच्छा किया, भगवान ने कहा इच्छा तुम्हारा पूरा होगा। और उतना ही नहीं, वो भेष बदल दिया, लाल कपड़ा बन ब्रह्मचारी बन गया, ग्वाल बाल बन गया। तो भेष का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा वैष्णव ड्रेस पहनो, धोती कुर्ता पहनो, ये चड्डी पहन करके या पैंट पहनकर मत घूमो। भगवान प्रसन्न होते हैं वैष्णव भेष से भी, तिलक करो हमेशा, ठीक है ना, कल से पैंट नहीं पहनना, धोती कुर्ता पहनकर मंदिर आना है? भगवान खुश होते हैं धोती कुर्ता से। ए प्रलम्बासुर ग्वाल बाल का रूप धारण कर लिया और ठीक वैसा ही पहन लिया, और तो भगवान ने कहा आप अटा तुम भी आ जाओ इधर खेलने के लिए आ जाओ। और वो खेल क्या था, आजकल का ही दिन था, बरसात के दिन में बड़ा खेल होता है, कबड्डी होता है, चिका होता है, धुआं होता है, क्या इधर को जानते हैं, यहां तक केवल क्रिकेट जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कुछ खेल, कुश्ती होता है। तो ये खेल था, इसका नाम था क्या, मृगया, नहीं मृणया है, नहीं उस भागवतम में वर्णन किया गया है, मृड़िका, मृड़िका ऐसे कुछ है। एनीवे उसमें था कि मृग मृग के समान, मृग या मृग नहीं, मृड़िका या मृग ऐसे कुछ है, एक पैर पर जंप करते हुए जाना था, ठीक है ना, और जो आगे चला जाएगा वो जीत गया, जो पीछे रह गया वो हार गया। तो उस स्थान से जो हार गया उसको अपने कंधे पर चढ़ा करके जहां से दौड़े थे वहां तक लाना और फिर वहां जाना था। तो दो दो बच्चों की जोड़ी थी जंप करने के लिए, तो कृष्ण के साथ श्रीराम हो गए और बलराम जी के साथ में यह प्रलम्बासुर जो ग्वाल बाल का रूप धारण किया था। तो बलराम को जंप करते करते आगे निकल गए, और ये चाहता भी था कि वही फर्स्ट हो, हम सेकेंड हो, ताकि हमारे कंधे पर चढ़े फिर मैं ले जाऊंगा। भगवान जानते थे कि उसके दिल में क्या है, लेकिन फिर भी दो कारण से भगवान स्वीकार कर लिए, क्योंकि एक तो वह वैष्णव भेष धारण किया था और दूसरे उसके दिल में इच्छा हुई थी कि मैं खेल खेलूं। भगवान स्वीकार की, कोई बात नहीं आ जाओ आ जाओ। और जब हार गया तो बलराम जी को उठाया और वहां से उठा करके आना था, फिर जाना था, जाने के बाद वहीं रुकना था, लेकिन ये पट्टा लेकर के भागते चला गया आगे, जा रहा है जा रहा है। बलराम जी से क्या हो रहा है, तो बलराम जी तो पूरे पृथ्वी को भार धारण करने वाले हैं, दबा दिए थोड़ा, अब चल ही नहीं रहा था, लेकिन जा रहा था जा रहा था, चल ही नहीं रहा था, भार इतना था चल नहीं पा रहा था जा रहा था। तो बलराम जी ने कृष्ण से पूछा कि भाव बताओ क्या करूं, इसको क्या करना चाहिए। तो इसका वर्णन अच्छी तरह से हरिवंश में किया गया है कि भगवान कृष्ण बलराम जी को बताए कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का, सब मिला करके इसके लीला को समाप्त कर दीजिए। भगवान जी उठाए, मुट्ठी बांध करके दे मारे उसके सिर पर, उसका खोपड़ी फट गया पूरा, खून चारों तरफ विदीर्ण हो गया, उसके प्राण पखेड़ू निकल गए। इस प्रकार से भगवान वृंदावन में ये कुछ लीलाएं किए। मथुरा में जब भगवान थे तो कई एक लीलाएं किए असुरों को मारने का, जैसे ये दोनों भाई चाणूक और मुष्टिक, उन लोगों किरणया ना किरणया मृगया किरणया मैं नहीं, उस लीला उसकी उसका नाम है कुछ, मैं भूल रहा हूं, लॉन्ग एगो पढ़ा था, मैं भूल रहा हूं। एनीवे तो वहां पर चाणूक और मुष्टिक को मारे, उसके बाद कुछ समय के बाद जरासंध बहुत प्रकार से लड़ाई कर रहा था, इतना निर्लज था, कई एक बार बलराम जी उसको परास्त कर दिए, कई एक बार भागे 18 बार, फिर भी वो निर्लज था। तो उन लोगों ने सोचा कि यह जगह अब ठीक नहीं है, रहने जो ठीक नहीं है। उसी समय बलराम जी के विवाह का प्रस्तावना आ गया, जब मथुरा में थे तो उन्हें विवाह का प्रस्तावना आया। ये द्वारिका कृष्ण का बपौती नहीं है, ये बलराम जी को दहेज में मिला है। द्वारिका नाम बाद में पड़ा। ये महाराज रेवत का वह राजधानी था। रेवत कुकुदमी नरेश थे, उस स्थान का नाम था कुकुदमी, जिसका राजधानी था कुशस्थली, या उसे आनर्त भी कहा जाता था। ये पूरा जो कच्छ एरिया है ना, यह कुशस्थली है। ये वैवस्वत मनु के संतान थे महाराज सरयाति, और सरयाति का यह राजधानी था कुतस्थली। अब महाराज ये सतयुग से था, लेकिन रेवत गए थे ब्रह्मा जी के पास पूछने के लिए मेरी पुत्री का विवाह किससे होगा, तब तक से उनके। अब जब विवाह का प्रस्तावना आया उसके बाद वे जगह छोड़ दिए थे कुतस्थली को। तो बलराम जी का विवाह वगैरह सब ठीक हो गया था। जब यहां अत्याचार हो रहा था तो ये लोग सोचे कि नया बहू घर पर लाएंगे, फिर जरासंध परेशान करेगा, तो शांति होना चाहिए कम से कम। तब रेवत जी ने कहा चलिए हमारे यहां ही वहीं पर। तब कुशस्थली में ये लोग गए, और एक कच्छ का जो एरिया है वो कुशस्थली कहलाता है, और वहां पर भगवान समुद्र के बीच में वही कुशस्थली है, उसको द्वारिकापुरी के रूप में बसाए। रेवती से विवाह हुआ। वर्णन किया गया शास्त्र में कि रेवती जी बहुत लंबी चौड़ी थी, सज्जू की थी ना, बहुत लंबी। बलराम जी बहुने, बलराम जी स्वयं 6-8 फुट के थे, उनसे भी लंबी थे, 28 फीट के थे। अब 8 फीट के बलराम जी 28 फीट के हो, तो बलराम जी उसको झापड़ मारे नीचे आ जाओ, अपने हल करके थोड़ा सिर पर ठोक दिए, ब्रू आ गए नीचे, थोड़ा नीचे हो गए। तो इस प्रकार से रेवती जी छोटी हुई, नहीं तो बलराम जी को देखना पड़ता अपने पत्नी को, ऐसे ऊपर देखते तो हर स्पर्श करते ही रेवती जी छोटी हो गई। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में विवाह। अब जब द्वारिका लीला में कई एक लीलाएं हुई, उसमें से एक विशाल लीला आप लोग जानते हैं, कुरुक्षेत्र का लड़ाई, भीम और दुर्योधन दोनों बलराम जी के बड़े प्रिय शिष्य थे। अब जब युद्ध निर्णय हो गया कि युद्ध का कि अब लड़ाई होने ही वाला है, टलने वाला नहीं है, तब बलराम जी सोचे कि भीम भी हमारे लिए प्रिय है, दुर्योधन भी प्रिय है, अब किसका साइड लो। तो बलराम जी ने कृष्ण से कहा देखो अब मेरा मन कर रहा है तीर्थ यात्रा पर जाने का, बहुत दिन हो गया, थोड़ा वृंदावन से थोड़ा घूम करके आ जाऊं, बहुत थोड़ा घूम कर आ जाऊं। तो वे चले गए घूम। हाँ, मथुरा लीला में एक और लीला है कि बलराम जी एक बार वृंदावन आए थे और बारूणी पान किए थे, मदमत्त हो गए थे और ठंडा करना चाहते अपने को, तो जमुना जी को बुला रहे थे, तो जमुना जी आगे बढ़ रहे थे, बलराम जी पीछे बुला रहे थे। तो जमुना जी ने कहा मैं ऐसे कैसे कर सकती हूं, पथ भ्रष्ट कैसे हो सकती है, मेरा पथ है इसके लिए आगे जाना, पीछे कैसे आऊंगी, यदि मैं अपने पति समुद्र के पास जाऊंगी और हमारे जो सौते हैं वो क्या हमको बोलेगी, तो पथ भ्रष्ट है, अपने गमन स्थली को छोड़ दी है, ऐसे प्रवचन जमुना जी कर रही थी, सोच रही थी। तो बलराम जी गुस्सा आ गया, लगाए हल फुल खिंच करके लगाए, कह आओ हमारे सेवा में पथ भ्रष्ट कोई नहीं होता, सब पवित्र हो जाता है, आ जाओ इधर। तो वो वृंदावन में लीला है, संक्षिप्त में बता दिया, भागवतम पढ़ सकते हैं ज्यादा। हाँ, अभी बता रहा था मैं कुरुक्षेत्र वाला। तो भगवान कहे कि अब मैं तीर्थयात्रा पर जाऊंगा। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका, अंतिम बार दुर्योधन और भीम का सामना हुआ, बलराम जी वहां टपक पड़े और गुरु जी के सामने दोनों से सब लड़ाई कर रहे हैं। जब लड़ाई होने लगी तो लड़ाई का नियम है कि नाभि स्थली से नीचे, गदा युद्ध का ये नियम है कि नीचे नहीं पड़ना चाहिए। और बलराम जी देख रहे थे, कृष्ण देख रहे थे, भीमसेन बेचारे गुरुजी सामने थे। अब ट्रैफिक पुलिस के सामने गाड़ी चलाने में थोड़ा तो दिमाग गड़बड़ाता रहता है ना, और बलराम जी सामने थे, अब लड़ाई हो रही थी। कृष्ण ने कहा था भीम से कि तुम उसके जांघे पर मारना, लेकिन बलराम जी की तरफ देखते थे भीम जी गड़बड़ाया था, वो देखे मन्निगत मारने के लिए, और लड़ाई करते करते पस्त हो गए भीमसेन। भगवान कहते हैं मारो मारो, इधर मारो इधर मारो, भगवान बता रहे हैं, लेकिन भीम कर ही नहीं थे, भगवान दांत पीस पीस कर बता रहे थे। अंत में भीम उठाए गदा, मार दिए जंगे पर, जंगे पर मार दिए, और बलराम जी का कोप देखा नहीं गया। बलराम जी इतना गुस्सा में आए कि भीम को खत्म करने के लिए तैयार हो गए, जाओ अब मैं तुम्हें मारूंगा, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा, भीम को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा दाऊ जी शांत रहो शांत रहो, जब समय था तो उस समय तो आप तृतीय आधार पर चले गए थे, अभी अपना पहलवानी दिखाने आ रहे हो, शांत रहो शांत रहो। आपको याद है ना जब चीरहरण द्रौपदी का हो रहा था, उस समय भीम ने प्रतिज्ञा किया था, जब दुर्योधन कहा कि जंगे पर लाकर बैठाओ द्रौपदी को, तो भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस जंगे को तोड़ूंगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बुआ का बेटा अपना प्रतिज्ञा तोड़ दे, प्रतिज्ञा पालन न करे? और दूसरी बात यह, निर्मल जब अपने मां के सामने गया था नंगा, तो क्यों पहना था वहां पर, क्यों पहना था वो केले का पत्ता, क्यों पहना था? नंगा मां ने बोला था नंगा जाना चाहिए था। तो बलराम जी करे बदमाश कृष्ण, ये तुम्हारा चाल था, तूने उसका बुद्धि खराब किया था, तूने कहा था कि मां के सामने नंगा कैसे जाएगा। तो भगवान ने कृष्ण, अच्छा जब मेरा वो इतना आज्ञाकारी था जैसा आपका आज्ञाकारी है, तो मैं तो कहा था कि इन पांचों को पांच भाई को पांच गांव दे दो, मैं तो यही कहा था ना, वो क्यों नहीं माना? ये तो वह मानता है जो उसको अच्छा लगता है, ये वह नहीं मान जो मैं कहा हूं, तो इसलिए हमको आप दोष मत दीजिए दाऊ जी, ये हमारा गलती नहीं है, वो अपने कर्म से मर रहा है और भी अपना प्रतिज्ञा पूरा। इस भगवान ने बलराम जी को संभाला। बलराम जी को जब गुस्सा होती थी तो भगवान शिव बलराम जी के अंश हैं, आप समझ सकते हैं जब प्रलय होता है तो कैसे संकर्षण देव का अंश शिव जी तांडव नृत्य करके प्रलय करते हैं। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में महाभारत में यह लीला सुधाम गमन, इसकी दो लीलाएं हैं सुधाम गमन की। हाँ नहीं, वो तो द्वारिका से गए थे उस समय, एक बार द्वारिका से गए बलराम जी, तीन बार द्वारिका से वृंदावन गए, फिर एक बार मथुरा से गए, एक बार द्वारिका से गए, और एक बार कृष्ण बलराम दोनों वृंदावन गए द्वारिका से अंतिम लीला में। तो एनीवे जब द्वारिका का विनाश हो रहा था, ध्वंस हो रहा था, प्रभास क्षेत्र में सब लोग गए, सब एक दूसरे को मार काट कर बम चले गए, उस समय बहेलिया ने कृष्ण को बाण मारा, कृष्ण सुधाम गए और बलराम जी शेष का रूप धारण कर करके शेष स्वरूप में विलीन हो गए, ऐसा वर्णन किया गया। आज भी वहां पर एक गुफा है, गुफा में चले गए शेष बन करके, ये तो वहां वर्णन वैष्णवाचार्य अलग वर्णन करते हैं। कृष्ण बलराम अंत में गए वृंदावन और वहां जितनी ब्रज की गोपियां थी उन सब लोगों को भेज करके, जो जहां जहां की थी उन लोगों को वहां भेज करके, और स्वयं ये लोग काम वन में, वो पर्वत का नाम ब्रह्म पर्वत नहीं, यहां थाली भोजन थाली है ना, वहां पर्वत का नाम जहां भोजन थाली है वहां बहुत बड़ा पर्वत है, भोजन स्थली के बगल में बड़ा पर्वत है। एनीवे उस पर्वत से कृष्ण और बलराम जंप किए और सुधाम सुशरीर सुधाम चले गए, यह बात गोपाल चंपू में श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का सुधाम लीला हुआ बलराम जी का। तो जन कुछ कार्यकलाप, उनका तत्व नामकरण, कुछ लीलाएं और सुधाम का संक्षिप्त में बलराम जी के लीला का हमने वर्णन किया। किसी कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, माइक दीजिए।
रेवती की गर्भ में 7 महीने आ रहे हैं बलराम, तो उसके बाद रोहिणी की गर्भ में कितने महीने थे?
अच्छा प्रश्न है। भागवतम में कहा गया 7 महीना थे, तो 2 महीना और रहे होंगे, 9 महीना हुआ होगा, तो वो वर्णन कहीं नहीं किया गया है, तो मान लेते हैं 2 महीना होंगे। और भगवान 7 महीना का, 1 महीना के भगवान भगवाने हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन भागवतम में वर्णन किया गया कि 7 महीने में देवकी का गर्भचित हुआ था, ये वर्णन है, लेकिन कितने महीने में जन्म हुआ ये वर्णन नहीं है। 2 महीना में कि उस समय हो गया पता नहीं, ये वर्णन नहीं। क्या क्या है, ठीक है तो देख लेना।
और ये जो बलराम सेवा करते भगवान की, एक जगह लिखा है कि 5 लोग, और एक जगह लिखा है कि 6 अध्याय में कि 10 रूप हरे हरे कृष्णा के सेवा, उसमें छत्र पादुका चक्र सूत्र,
हाँ चतुर्भ्यूह में जो शंख चक्र गदा पद्म वही बलराम जी का स्वरूप है, और पादुका के रूप में भी है।
छत्र आसन पादुका सिंहासन
अनंत है, अनंत रूप में सेवा करते हैं, लेकिन मुख्य करके 4 सृष्टि पर्यत जो क्लियर है, और जो 5वां जो शेष है अनंत है, वो अनंत रूप में सेवा करते हैं, लेकिन मुख्य करके 5।
उनका नाम शेष क्यों बना
मुझे मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। जनार्दन तो बेतावले हो रहे हैं भाई, उनको माइक जल्दी दो।
हरे कृष्णा, जब मृत्यु हो जाता है और स्मशान में ले जाते हैं तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य माने कहा जाता है, बाकी कुछ दूसरे कोई देवों का या कृष्ण का नाम नहीं बोला जाता है, तो ये क्यों ऐसा, क्योंकि राम नाम सत्य राम का ही नाम बोला जाता है।
आपका प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, हालांकि प्रवचन में एक बात नहीं कहा लेकिन प्रश्न अच्छा है। ये बात सत्य है कि राम नाम ही सत्य है, और कोई सत्य नहीं है, इसीलिए हम लोगों को जब होश हवास हो तभी से राम नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
राम है। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। राम जो आए हैं वो संसार के लिए आए थे, माता पिता का कैसा संबंध होना चाहिए, पुत्र परिवार का कैसा संबंध होना चाहिए, इसलिए संसार में जो आए थे इसलिए वो राम राम सत्य अपने कहते हैं। जो मेरी बात जो है बराबर है कि नहीं?
शास्त्र सम्मत बात नहीं है, क्योंकि राम किस राम को आप कह रहे हैं? कृष्ण का भी नाम है राम, बलराम का भी नाम है राम, परशुराम का भी नाम है राम, तो यदि आपके व्याख्या के अनुसार दिया जाए तो दशरथी नंदन राम का आप बात कर रहे हैं, लेकिन राम कृष्ण को भी कहते हैं, राधा रमती इति राम, जो राधा रानी के साथ रमण करें वो राम कहलाते हैं, जो सबको आनंद दें वो राम कहलाते हैं। अभी व्याख्या में किया भागवतम में
है?
हाँ, राम जो सबको आनंद देता है उसे राम कहते हैं, बस बैठ बैठो, अरे हो गया, हाँ बैठ। और कोई प्रश्न? हाँ आराधना, अपना काम निकल गया, हो गया, चल दिया। हाँ
कहा जाता है कि बलराम जी को जो है योग माया ने रानी के घर में स्नान के लिए, लेकिन आप वर्णन किए हैं कि बलराम जी आए थे पूरे चेतना में थे, भगवान पूर्ण चेतना में रहते हैं, और वो जो है माता के गर्भ को साफ करने के आए थे जठराग्नि से, लेकिन जब भगवान जी भगवान है बलराम जी सब कुछ है, तो योग माया को क्यों स्थापित किया गया रानी के गर्भ में स्थापित करने?
क्योंकि योग माया का अपना काम है, वो शक्ति है, कोई काम करना होता शक्ति चाहिए, हम बोल रहे हैं शक्ति चाहिए, बिना शक्ति थोड़े बोल पाएंगे। आप वहां बोला मैं सुना, माइक क्यों चाहिए आपको बोलने का, माइक क्यों चाहिए आपको बोलने का? हां, शक्ति बढ़ाने के लिए ना, तो शक्ति का काम है ट्रांसफर करना, यहां से वहां ये करना, शक्ति से सब कुछ होता है। तो जोग माया भगवान की शक्ति है, उनका सेवा और सेविका है, उनका वह काम है सेवा करना, सेवा की। और कोई प्रश्न? हां, बलराम जा सकते हैं, लेकिन उनको अच्छा लगा माता देवी के पास, क्या तकलीफ था? और एक और कहां बता रहा हूं, दूसरा बात था, आचार्य गर्भवर्णन करते हैं कि यदि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित नहीं किया जाता, बलराम जी जरूर आते, और कंस अपने आदत से बाज आने वाला था नहीं, तो वह आता बलराम को मारने के लिए, बलराम को छूते ही उसका संहार हो जाता, मर जाता, फिर भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ता। और दूसरा, मान लो यदि बलराम को किसी कारणवश मार भी देता, मान लो केवल मार देता, तो पूरी पृथ्वी रथाता में चली जाती, क्योंकि शेषनाग धारण करने वाले हैं। हां, बलराम जी चाहते तो जा सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी, वो भी भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जोग माया को भी सेवा मिलनी चाहिए ना, हाँ उसको भी सेवा मिलना चाहिए, नाराज हो जाएगी, फिर परेशान करेगी जोग माया, ऑलरेडी परेशान बहुत लोग कर रही है महामाया के रूप में। हाँ,
हरे कृष्ण बोल, आपने बहुत बताया कि कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है,
बिल्कुल शास्त्र कहता है, भगवान अपने जोग माया से किसी को आवृत कर सकते हैं, किसी को भी, अपने आप को ही भगवान कभी कभी आवृत कर देते हैं। द्वारका लीला में कथा है कि भगवान कभी मिरर देखते नहीं थे, हैं? जब जा रहे थे तो ये पिलर जो था ना, उसमें अपना चेहरा देख लेके, मैं इतना सुंदर लगता हूं, उनको आश्चर्य, मैं इतना सुंदर लगता हूं, इसलिए भक्त लोग हमारे पीछे पीछे दौड़े रहते हैं। रामलीला में भी है कि भगवान राम एक बार देख लिए अपना चेहरा और उसी से बड़े मुग्ध हो गए। तो भगवान अपने को भी छिपा दे, भगवान की लीला है और कुछ नहीं, जोग माया काम है भगवान की लीला में सहायता करना, लीला है और कुछ नहीं। और कोई प्रश्न? संकर्षण दो प्रकार से हैं, एक तो उनको खींच करके लाया गया था, समकर्षण सम्यक रूप से आकर्षित, और दूसरा जो कि भागवतम में वर्णन किया गया, जब यदुवंशी राव झगड़ा करेंगे तो दोनों को मिलाना भी संकर्षण कहलाता है। दोनों सही है। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।